विश्व ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबके श्री चरण कमलों में मेरे नमस्कार। सबके हृदय में नित्य विराजित हैं, प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ के रूप में भगवान है, आत्मा के रूप में भगवान है, परंतु भगवान के रहते हुए भी अपने अंतरस्थ भगवान का भी हम दर्शन नहीं कर पाते। तुलसीदास जी महाराज ने भगवान शंकर पार्वती की स्तुति करते हुए कहा, भवानी शंकर वंदे, स्वांतस्थ हैं, अपने अंदर नित्य विराजित हैं, क्षण भर के लिए भी भगवान का हमसे वियोग नहीं होता। भगवान न रहे, हमारी सत्ता न रहे, हम न रहे, तो ऐसे नित्य संगी भगवान को भी हम देख नहीं पाते। इसलिए भगवान हमारे अंदर हैं, इस बात पर न हमें श्रद्धा है न हमें विश्वास है। इसीलिए भगवान की सत्ता सर्वत्र होते हुए भी हम निडर होकर, निर्भय होकर, निसंकोच चाहे सो आचरण करते हैं। यदि हम इस बात को जान लें कि हमारी प्रत्येक क्रिया को, प्रत्येक मन के अंदर को बुरा काम करने में, बुरा विचार होने में हमें लज्जा हो, कभी हम कुछ करते हों और वो अगर अच्छी चीज न हो और इतने में कोई भी आदमी बाहर का आ जाए तो उसे देख कर हम सकुचा जाते हैं, लजा जाते हैं कि भाई कैसे इसके सामने ऐसा करें। तो भगवान यदि हमारी सब चीजों को देखते हैं, हमारे प्रत्येक क्षण के वो दृष्टा हैं, ये बात अगर हम ठीक ठिकाने से विश्वास कर लें, है तो ऐसा ही, तो क्या होगा कि हम फिर छिपकर, अपने मन में भी छिपाकर किसी भी बुरी बात को न सोच सकेंगे न कर सकेंगे। तो भगवान में श्रद्धा विश्वास की आवश्यकता। दूसरी बात, भगवान में श्रद्धा विश्वास होने पर हम निर्भय हो जाते हैं। बहुत बार बिना हुए कई हम भूत की प्रेत की कल्पना कर लेते हैं, अंधेरे में किसी लकड़ी को देखकर समझ लेते हैं तो कोई खड़ा है और हम डर जाते हैं, कांप जाते हैं। वहां तो वो भूत है नहीं, लकड़ी है, पर भगवान तो सब जगह है ना। अगर हम भगवान को देखें सब जगह, तो जैसे भूत की कल्पना से हम भयभीत हो जाते हैं, ऐसे भगवान को देखने पर हम निर्भय हो जाएंगे। भगवान हमारे साथ हैं। प्रह्लाद को गोद में बैठाकर बड़ी स्नेह की वृत्ति से पिता हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि बेटा, तुम बड़े निर्भय मालूम होते हो, तुम्हारे लिए मानो डर कहीं रह ही नहीं गया, ये क्या बात है, तुम किसके बल पर इतने निर्भय हो। तो प्रह्लाद का सीधा बनावट ही नहीं, उसके अनुभव का उत्तर था कि जिसके बल पर सब लोग बलवान हैं, जिसके बल से आप बलवान हैं, उन्हीं भगवान का बल मेरे पास है, भगवान के बल से मैं बलवान हूं। तो क्या होता है कि किसी भी स्थिति में प्रह्लाद को भय नहीं होता, प्रह्लाद को अपने विनाश की आशंका नहीं होती। प्रह्लाद जानते हैं कि प्रत्येक रूप में भगवान आने वाले हैं, भगवान आएंगे, भगवान से मिलना होगा। जब प्रह्लाद को ले जाने लगे सांपों से डसवाने के लिए, बड़े विषधर सर्प उनसे डसवाएंगे, तो प्रह्लाद ने अपने मन में सोचा कि विषधर सर्प तो नाम है तो भगवान ही, तो सांप का जहर क्या सांप को मारता है, इसके तो अंदर जहर रहता है, तो फिर मुझे ये विषधर सर्पों का जहर क्यों मारेगा। भगवत बुद्धि सुदृढ़ हो गई तो सांपों का जहर जो था वो निष्प्रभ हो गया, उसमें कोई शक्ति नहीं रही। ये आजकल के हम लोग चाहे इस बात को न माने कि भाई ये चीज कैसे होने की है, विष अपने स्वभाव को कैसे छोड़ देगा, पर सिद्धांत यह है कि विष में जो विषत्व है, चंद्रमा में जो ज्योति है, सूर्य में जो प्रकाश है, अमृत में जो अमृतपना है, हमारे अंदर जो जीवन है, ये सारा का सारा भगवान को लेकर के है, भगवान है। उपनिषद में कथा आती है, केन उपनिषद में प्रसंग है ये कि राक्षसों के दैत्यों के साथ देवताओं का युद्ध हुआ, देवता विजयी हो गए। विजयी होकर इंद्र जरा गर्भ में आ गए और वो हिमालय में जाकर के एक जगह बैठे। इंद्र थे, अग्नि देवता थे, वायु देवता थे, अब वो अपने अपने बल पौरुष का बखान करने लगे, हमने दैत्यों पर विजय पाई, हमने पाई। वो गर्वोन्मत्तता आ गई। इतने इंद्र ने देखा सामने एक बड़ा लंबा चौड़ा यक्ष दिख रहा है, पृथ्वी से लेकर न मालूम कितना ऊंचा आकाश में। तो इंद्र ने सोचा ये कौन है पता लगाएं। बातचीत हुई तो अग्निदेवता बोले कि हम जाए पता लगाया हुए, बोले हाँ पता लगाओ आप जाओ। तो अग्निदेवता यक्ष का पता लगाने पहुंचे। यक्ष ने पूछा अग्नि से कि आप कौन है, तो अग्निदेवता भी अपने गर्भ में थे, बोले हम कौन है आप नहीं जानते, हम तो अग्नि हैं, जात वेदा हैं हम तो। बोले आप क्या करते हैं, क्या शक्ति आप में है, क्या बल है। बोले हमारा बल भी कोई अनजाना बल है क्या, हम सारे संसार को भस्म कर दें अभी इसी क्षण है, समस्त चराचर को हम दग्ध कर दें, जला दें। तो कहा ऐसी शक्ति आपने, बोलिए तो है ही। तो यक्ष ने एक सूखा तिनका दिखाकर अग्नि से कहा कि आप जाए इसको जला दीजिए। अग्नि देवता ने मन में अपना कुछ अपमान सा समझा कि मुझे कहता कि ये तिनका जला दो, तिनका कौन बड़ी बात है। अग्नि देवता ने सहज उसे जलाने का प्रयास किया, वो जला नहीं। अग्नि देवता ने अपनी पूरी शक्ति जो कुछ वो अपने में समझते थे वो लगा दी, पर तिनका जला नहीं। जलता कैसे, अग्नि में जो अग्नित्व था, अग्निपना था, वो नहीं रहा, तिनका नहीं जला। तो यतप्रभ होकर लज्जित होकर वापिस लौट आए। इंद्र ने पूछा क्यों पता लगाया, बोले नहीं हमने तो कुछ पूछा उछा नहीं, आ गए ऐसे ही। तो वायु देवता बोले हम जान, हाँ बोले आप पधारो। तो वायु देवता गए यक्ष का पता लगाने। यक्ष ने पूछा महाराज आप कौन है, बोले हम वायु हैं, आप में क्या क्या शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं, क्या बल आप में है। बोले हमारा बल सब जानते हैं, हम सारे संसार को यूं आकाश में उठा दें और ठहरा दें उसको ऐसे ही हमारे बल पर, उड़ा दें सबको। तो उन्होंने यक्ष देवता ने वही तिनका दिखाकर कहा कि जरा इसको उड़ा दीजिए आप। अब महाराज वायु देवता भी अपना सारा जोर लगाकर हार गए, वो तिनका हिला भी नहीं। तो वायु देवता भी वहां से असफल होकर लौट आए, बोले हमने भी कुछ जाना वाना पूछा ही नहीं, क्या पूछते। इंद्र स्वयं गए, इंद्र के जाते ही वो यक्ष जगदम्बिका के रूप में परिणित हो गए। ब्रह्म विद्या भगवान की शक्ति उमा, जगदम्बा ने इंद्र को बताया कि तुम क्या अभिमान करते हो, तुम्हारे में और वायु में अग्नि में किसी में भी जो बल है, वो बल तो जहां बल है उसका बल है। ये पंखे लगे अभी और देखिए कितना चल रहे हैं, हवा आ रही है, और यदि पावर हाउस से वो कनेक्शन तोड़ दिया जाए, वहां से करंट ना आवे, तो बड़े सुंदर पंखे हैं, बड़े हवा दे रहे थे, किस काम के हैं। तो बल तो जहां बल है वहां से आता है। तो प्रह्लाद के लिए जितनी भी शक्तियां थी प्रह्लाद को मारने की, उन सब में जो मारने की शक्ति थी, बल था, वो भगवान का था। तो भगवान ने अपने उस बल को वहां से हटा लिया, तो अग्नि जला नहीं सकी। प्रह्लाद को अग्नि जला सकी, वही प्रह्लाद अग्नि में बैठा ठंडक का अनुभव कर रहा है, और उसी अग्नि में होलिका देवी जल जाती हैं, क्या बात है। तो ये भगवान का बल, तो भगवान का बल जिसको प्राप्त होता है उसके सामने सारे बल परास्त हो जाते हैं, वो निर्भय रहता है। हमें जो बात बात में भय है, ये नास्तिकता को लेकर के है। भगवान को न माने, हम अपने को आस्तिक कहें, कहना भी अच्छा है, पर जो आस्तिक है भगवान को सर्वत्र देखने वाला, वो आस्तिक है। वो नित्य निर्भय रहेगा, नित्य वो सदाचार संपन्न रहेगा। भगवान सामने है ना, भगवान की उसे पूजा करनी है, और भगवान से कर्म संकोच भी है, भगवान के सेवा के प्रसन्नता के उपयुक्त काम वो करेगा, बुरा काम करने में संकुचित होगा। तो भगवान सब जगह हैं, भगवान सर्वत्र हैं, हमारे हृदय में भी नित्य निरंतर विराजमान हैं, बाहर भी वही हैं, भीतर भी वही हैं। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। भगवान को दूर मानो बड़े दूर, नजदीक मानो बड़े नजदीक, अपने साथ मानो नित्य साथ। उनके साथ जितने संबंध हमारे हैं ना, ये सब के सब उनके साथ लागू होते हैं, क्योंकि जितने भी संबंध वाले हमारे हैं उन सब में तो वही हैं, दूसरा कौन है। तो उन्हें भाई माने, पिता माने, पुत्र माने, स्वामी माने, नौकर माने, शत्रु माने, कुछ भी माने, प्रत्येक संबंध भगवान से जुड़ सकता है। तो हम सभी संतप्त हैं, भला जगत में भगवान का आश्रय जिनको है, उनके अतिरिक्त जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो ऊंची से ऊंची लौकिक स्थिति पर स्थित हो, पर वे सब के सब प्राणी स्वाभाविक ही दुखी हैं, संतप्त हैं। भगवान ने इस जगत के तीन नाम दिए हैं, असुखम, दुखालयम और दुख योनि। भगवान ने कहा कि अर्जुन देखो, तुम जिस जगत में हो, जिस लोक में हो, ये असुख है और अनित्य है। सुख चाहते हो तो मां भजस्व, मुझको भेजो जहां सुख ही सुख है। वे अच्छा सुख नहीं सही, बोले नहीं सही नहीं, ये दुखालय है। दुखालय मशाश्वतम, अशाश्वत होने के साथ साथ जैसे विद्यालय अनाथालय वस्त्रालय होते हैं ना, ऐसे ये जगत दुखालय है। और केवल दुखालय नहीं है, ये संस्पर्शजा भोगा दुख योनयेव से, ये जितने भी संस्पर्शज भोग हैं, ये भोगात्मक जो जगत है, ये दुख की उत्पत्ति का क्षेत्र है। दुखों के दुख रूपी फल पैदा करने वाला ये खेत है, योनि है, इसमें से दुख निकलते हैं। तो इस जगत में जगत को पकड़कर जो लोग, चाहे वो इंद्र बन जाए, किसी भी ऊंची से ऊंची स्थिति में वो चले जाए, वो दुखी रहेंगे, वो संतप्त रहेंगे। तो सब मनुष्य वो चाहे अपना दुख किसी के सामने रो सके न रो सके, ये दूसरी बात है। ये जो बड़े लोगों का दुख होता है ना, वो ज्यादा दुख देने वाला होता है। छोटे लोग तो रो लेते हैं, बड़े लोगों के रोने में उनकी पोजीशन बाधक होती है। मैंने सुनाया था पहले कई बार, एक बार मैं बहुत दिनों पहले की बात है, हिंदू विश्वविद्यालय में गया था मालवीय जी के दर्शनार्थ। मैं गया, बातचीत हो रही थी, इतने में एक सज्जन वहां आ गए। वो मेरे पुराने परिचित थे, बहुत दिनों से नहीं मिले थे। तो बातचीत होने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हनुमान, तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा करो। बोले यहां नहीं, अकेले में करनी है। अच्छा अकेले में करो। तो वहां से हम लोग उठे, वो विश्वविद्यालय की सीमा से बाहर जंगल में वो मुझको ले गए और वहां ले जा करके पेड़ के पास जा करके बोले बैठ जाओ। मैं बैठ गया, वो बैठ गए। बैठते ही वो रोने लगे, फुफकार मारकर रोने लगे। देखा कोई देखता तो नहीं है, कोई नहीं था, रोने लगे। मैंने कहा भाई बताओ तुझे क्या बात है। तो हाथ से इशारा किया कि अभी बोलो मत। बहुत देर तक वो रोते रहे, फिर उनमें अपने आप धीरे जाया, रोना रुका। तब पहली बात वो ये बोले कि आज रोने का मुझको अवसर मिला। फिर उन्होंने अपने दुख बताए। वो दुख वही जानते थे, ऊपर से देखने वाला उन दुखों की कल्पना नहीं कर सकता, पर वे उन दुखों को भोग रहे थे। वो सत्य दुख थे, लेकिन स्थिति ये कि अपने दुखों को वो प्रकट नहीं कर सकते। घर में भी, अपनी पत्नी के सामने भी, अपने पुत्र के सामने भी, बहुत बड़ा उनका व्यापार, बहुत बड़ा कारोबार, मोटर मकान, सब कुछ। लोग समझते हैं बाहर वाले कि ये बहुत सुखी हैं। जिनके पास अभाव है, वो जिनके अभाव नहीं है उनको सुखी मानते हैं, पर उनके पास अभाव नहीं है उन वस्तुओं का जिनका इनके पास अभाव है, पर उनके पास दूसरी वस्तुओं का अभाव है। संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो प्रकृति के राज्य में रह करके अपने को पूर्ण कह सके। प्रकृति में सब कुछ अधूरा है, यहां कहीं पूर्णता है ही नहीं। तो जहां जिस किसी अवस्था में मनुष्य पहुंचेगा, उसी अवस्था में उसको अभाव की अनुभूति होगी। ये चीज इतनी और हो तो ठीक हो, वो उतनी और है या आगे से आगे चलते ही रहेगा, इसमें ये कभी बंद नहीं होगा। और जितनी जितनी सफलता मिलेगी, उतना उतना ये प्रकृति के राज्य में आगे बढ़ना चाहेगा। फिर महाप्रलय होगी तो वो रुकना बंद होगा। ये संसार का अनादिकालीन ये स्वरूप है, संसार में ये चल रहा है, बनता है बिगड़ता है। ये सृजन और संहार ये भगवान की लीला है। तो जगत में सुखी कोई नहीं है, सुखी वो है जो भगवान का हो गया। तुलसीदास जी ने कहा, जागे जोगी जंगम जति समाज ध्यान धरें, डरे उर भारी लोभ मोह को काम के, जागे राजा राज काज मंत्री समाज साज, सुनिके समाचार बड़े बैरी बाम के, जागे बुद्ध विद्या हित पंडित तिगत चित्त, जागे लोभी लालची धरण धन धाम के, जागे भोगी भोग ही वियोगी रोगी रोग बस, सोए सुख तुलसी भरोसे एक राम के। पक्की बात, सबके नाम गिना दिए, योगियों जतियों के भी, उनको डर रहता कहीं काम के जा करके मैं पछाड़ जाऊं, राजाओं को डर रहता रातों उनकी मंत्रणा चलती है कहीं बैरी में आ जाए क्या करें, सुन के समाचार बड़े बैरी बाम के। विद्वान लोग बुद्धिमान लोग विद्या के लिए दुखी रहते अभाव देखते हैं, पंडित लोग कहीं शास्त्रार्थ पहले होता था हार न जाए इसमें दुखी रहते हैं, भोगी भोग में रोगी रोग में वियोगी वियोग में सभी दुखी रहते हैं, पर वो कहते हैं सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के। जो राम का हो गया, जिसका भार राम ने संभाल लिया, वो नित्य निर्भय है, नित्य निश्चिंत है, नित्य सुखी है। यही शरणागति का रहस्य है। शरणागत होने पर निश्चिंतता और निर्भयता अवश्यम भावी होती है। हम भगवान के शरणागत भी हों और हमारे अंदर भय चिंता भी बनी हो तो भगवान का तो माशुचे कहना ऐसे ही गया। वो कहते हैं कि तुम्हारी सारी चिंता मुझको, तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम तो केवल मेरा चिंतन करो। तो जगत में सुखी कोई नहीं है भला, और सुख के लिए हम सभी लोग नित्य सचेष्ट हैं। जितनी भी हम लोगों की क्रियाएं होती हैं अपनी जान में, भूल करता हुआ आदमी पर वो करता है अपना मन चाहा सुख प्राप्त करने के लिए, पर वो जहां जाता है जिस वस्तु को पाता है वही कहती है कि मैं तो दुख रूप हूं, अगली वो चीज मिलेगी तब तुम्हें सुख होगा। बहुत बड़े बड़े लोग एकांत में जब अपना दुख रोते हैं, एक सज्जन ने हमसे कहा कुछ दिनों पहले कि भाई जी हमारे समान दुखी तो तीन लोक में कोई नहीं है, और जगत के देखने में वो बड़े सुखी। हम जिनको उच्चाधिकारी मानते हैं, बड़े बड़े देशों के जो डिक्टेटर हैं, ऐसे लोग भी परम संतप्त रहते हैं। तो ये संताप मिटाना हम चाहते हैं, हम सुखी होना चाहते हैं, पर हम चाहते हैं उन वस्तुओं से, उन पदार्थों से, उन परिस्थितियों से जो स्वयं दुखमयी हैं, अभावमयी हैं। तो ये सुख कभी मिलने का नहीं है, ये सुख का सपना कभी सफल होगा ही नहीं, किसी का आज तक हुआ नहीं, हो सकता नहीं। इसलिए ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने ये बताया, भगवान ने स्वयं कहा भजस्वान, यदि तुम सुख चाहते